मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। एफईआईएस के आज 20 अक्टूबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉ विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी मधुपाल का जो बरेली उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने एकेडमी के 7 से 21 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, मुझे एक सूचना देनी है और ये सूचना है हमारे ऑनलाइन के जो पेड स्टूडेंट हैं उनके लिए कि उनको एक ऑडियो लेक्चर भेज दिया गया है, प्लीज उसे देख लें। ऑनलाइन के पेड स्टूडेंट्स के लिए यह सूचना है। आइए आज अब मुख्य विषय पर बात करते हैं और सीधे मुख्य विषय पर ही आते हैं क्योंकि दूसरी कोई ऐसी घटना है नहीं जिसे हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट मानकर आज कुछ वक्त दें। और आज जो मुख्य विषय के तहत जो विषय है वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है और दोस्तों यह विषय है भूख, हंगर, हंगरी, ये विषय है। आइए इस पर थोड़ी सी कुछ बहुत बेसिक बातों को देख लेते हैं। इस विषय को मैंने खासकर इसलिए लिया है कि अभी फ्राइडे को ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये वर्ल्ड हंगर इंडेक्स नहीं है, हालांकि हिंदी में इसका अनुवाद वैश्विक भूख सूचकांक ही है, विश्व से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में ये है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, GHI। इसमें कुल 107 देशों को लिया गया था जिसमें भारत की जो पोजीशन है वो है 94th। आप खुद कैलकुलेट करके देखिए कि केवल 13 देश ही ऐसे हैं जिनकी स्थिति भूख के मामले में हमसे भी खराब है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इसके बारे में विस्तार से बातें करूं, मैं थोड़ी सी आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। खासकर सिविल सर्विस में इन बारीकियों को जानना मुझे थोड़ा सा जरूरी लगता है। हमारे पास 3 शब्द हैं और इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल ज्यादातर हम पर्यायवाची के रूप में करते हैं। एक है भूख, हंगर, जिसकी बात हम कर रहे हैं। दूसरा होता है कुपोषण, मैल न्यूट्रिशन, और तीसरा होता है भूखमरी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टारवेशन। याद रखिए, भूख और भूखमरी कहीं न कहीं एक जैसे होने के बावजूद बिल्कुल एक नहीं है, बिल्कुल एक नहीं है। इन तीनों में जो बारीक अंतर है आप उसे थोड़ा सा समझ लें कि बेसिकली जो भूख है वो भूख क्या है। भूख का अर्थ 2 मूल तत्वों से है। पहला यह है कि आपको जितना भोजन चाहिए उतना भोजन नहीं मिल रहा है। आपने खाना खा लिया है लेकिन खाना खाने के बाद भी आपको कुछ और खाने की इच्छा हो रही है लेकिन आपको मिल नहीं रहा है और ये इच्छा तत्काल हो रही है, राइट? या फिर यूं कह लीजिए कि पोषक तत्व भोजन और भोजन के साथ कुछ आपको और भी खाने की इच्छा हो रही है लेकिन वो चीजें आपको नहीं मिल रही हैं। इसे आप सामान्य तौर पर बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि पेट भर भोजन नहीं मिल रहा है, सरल भाषा में ये भूख हो गई। भूख का मतलब आप बिल्कुल ये मत लगा लीजिएगा कि उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, 10 दिन से वो नहीं खाया है, ये है, ऐसा नहीं है। उसने खाया है लेकिन उसका पेट भरा नहीं है, इसे हम कहते हैं भूख, ठीक है। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं, गरीबी सबसे बड़ा कारण है और फिर गरीबी के और क्या कारण हो सकते हैं इसके बारे में आप जानते हैं लेकिन यहां समय भी नहीं है कि उस पर हम लोग बात कर सकें। इसके बाद जो दूसरा है वो है कुपोषण, मैल न्यूट्रिशन। अब आप देखिए कि हो सकता है कि मैं पेट भर तो भोजन कर रहा हूं, पेट भर मुझे खाना मिल रहा है लेकिन उसमें जो पोषक तत्व होने चाहिए वो मुझे पर्याप्त नहीं मिल रहे हैं। वो उसके रीजन दूसरे हो सकते हैं। हो सकता है मैं बहुत धनी व्यक्ति हूं लेकिन जो मेरा जो स्टाइल ऑफ फूड है वो उस तरह का नहीं है कि मुझे पोषक तत्व मिले। मैं उसमें दाल नहीं ले रहा हूं, मैं उसमें हरी सब्जियां नहीं ले रहा हूं, मैं केवल रोटी और उसके साथ कोई भी आलू की सब्जी खा रहा हूं तो पूरी तरह से पोषक तत्व तो नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं कुपोषण का शिकार हो जाऊंगा, राइट? अब यह बात अलग है कि जब हम कुपोषण की बात करते हैं तो यह कुपोषण किस वर्ग में ज्यादा मिलता है, ये कहीं ना कहीं भूख से जुड़ा हुआ है, जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जो केवल रोटी ही मुश्किल से जुटा पाते हैं या केवल मुश्किल से चावल ही जुटा पाते हैं, अब उनसे हम कहें कि भैया तुम थोड़ा सा दूध भी पियो, तुम थोड़ी सी हरी सब्जियां भी खाओ, थोड़े से 100 रुपए किलो का सेव भी थोड़े से खा लिया करो, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए भूख और कुपोषण का कहीं ना कहीं सीधा संबंध हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है कि कोई धनी वर्ग है लेकिन खाने की अगर उसकी जो प्रक्रिया है, जो प्रणाली है, वो ठीक नहीं है, उसके थाली में सभी तत्व तो नहीं है, तो वो कुपोषण का शिकार हो सकता है, उनके बच्चे कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। तो यह है मैल न्यूट्रिशन। अब तीसरा तत्व है भूखमरी। यह भूखमरी क्या है? ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है और बहुत ही आप कह लीजिए कि शर्मनाक स्थिति है। भूखमरी हम उस स्थिति को कहते हैं कि जबकि किसी व्यक्ति की मृत्यु सिर्फ इसलिए हो जाए क्योंकि उसे भोजन नहीं मिला। भूखमरी, भूख के कारण होने वाली मृत्यु। भूख क्या है कि पूरी तरह से भोजन नहीं मिला, वो सरवाइव तो कर रहा है लेकिन पेट भर खाना नहीं मिल रहा है। जैसे अगर किसी को एक टाइम खाना मिलता है तो वो भूख का शिकार है, वो भूखमरी नहीं है। भूख के कारण मृत्यु हो जाना, किसी का नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, यह है भूखमरी। तब आप फिर से देखेंगे कि यह जो भूखमरी है यह भी किस लिए है? गरीबी के कारण होगा। तो कहीं ना कहीं यह जो भूख है फ्रेंड्स, जो भूखमरी है और यह जो कुपोषण है, तीनों एक जैसे ऊपर से दिखाई देने के बावजूद तीनों बिल्कुल पर्यायवाची नहीं है, इसका आप ध्यान रखिएगा। राइट, हम बात कर रहे हैं अभी भूख पर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर। अब ये जो ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स बनाया गया, अब आप देखिए कि इसमें जो हंगर को डिफाइन किया गया, इसके लिए जो मानक बनाए गए हैं कि कैसे आप निकालेंगे कि किस देश का इंडेक्स कितना है, तो इसके लिए जो मानक बनाए गए हैं वो बेसिकली 4 मानक हैं। अब आप देखिए कि भूख तो एक ही है और भूख के क्या प्रभाव पड़ते हैं उनको भी इस मानक में शामिल किया गया है। इसे आप ध्यान से सुनिए, इसको मिलाकर के आप कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड भूख डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड है, विश्व की भूख पर दी गई परिभाषा है। पहले इसमें यह दिया गया है कि जो बच्चे हैं, इसमें 5 वर्ष तक के बच्चों को लिया गया है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, 5 वर्ष तक के बच्चों को शामिल करते हैं कि जो 5 वर्ष तक के बच्चे हैं उनकी जो लंबाई है वो उम्र के हिसाब से ठीक है या नहीं है। अब ये फिर से देखिए कि अगर किसी की लंबाई कम है तो ज्यादातर उसका कारण न्यूट्रिशंस का न मिल पाना ही है, भूख पर्याप्त भोजन न मिल पाना है, लेकिन जेनेटिक भी होता है, तो यहां आपको थोड़ा सा मार्जिन दे करके चलना पड़ेगा। तो भारत में जो चाइल्ड स्टनिंग की स्थिति है, छोटा कद रह जाने की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा है, 37.4% अभी के लेटेस्ट जो डेटा है। आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सामान्यतः मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से प्री में बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो पहला हो गया 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की लंबाई, कद आप कह सकते हैं। दूसरा है फिर चाइल्ड वास्टिंग, यानी कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका वेट कितना है, वजन कितना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वजन से जितना होना चाहिए उससे वो काफी कम है, और अगर वो काफी कम है तो उसको हंगर में डाल दिया जाएगा। इस तरह के बच्चों का जो प्रतिशत भारत में है वो है 17.3%, ये भी काफी है। इसके बाद जो तीसरा है दोस्तों वो है बाल मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर कितनी है, वो है 3.7%। अब ये जो 3.7% है, स्वाभाविक है कि भोजन ठीक से नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह से दूसरी बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि पोषण तो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चीज है। तो ये है 3.7% जो काफी हाई है। और इसके बाद ओवरऑल कुपोषण को ले लिया जाता है, मेल न्यूट्रिशन को ले लिया जाता है, हमारे पूरे पॉपुलेशन में मेल न्यूट्रिशन की क्या स्थिति है, कुपोषण की क्या स्थिति है, तो वह है 14%। हमारे पॉपुलेशन का 14% हिस्सा अभी कुपोषित है। इन 4 मानकों को आप यूं कह लीजिए कि मिला करके भूख की जो डेफिनेशन है वह तैयार की गई है। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है आप अपना सिलेबस उठा करके देखिए, अलग से मेंशन किया हुआ है भूख और कुपोषण ये आपके सिलेबस में हैं, इसीलिए आपको इस पर बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए इस टॉपिक को। और अगर आप मेन एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो बकायदे इस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं और प्रश्न पूछे भी जाने चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की जो समस्या है उसमें से एक सबसे मूलभूत समस्या है। अब होता यह है कि जब हम टॉपिक्स को तैयार करते हैं इस तरह के टॉपिक्स को, तो वो रूटीन की चीजें नहीं पूछी जाएंगी कि कुपोषण के क्या कारण है, फलाने फलाने क्या है। नो, आप देखें कि लेटेस्ट में क्या घटना घटित हो रही है। जैसे कुछ दिनों पहले हमने इसमें चर्चा भी की थी डेली ऑडियो लेक्चर में, आपको याद होगा कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसे इस साल का बकायदे नोबल शांति पुरस्कार दिया गया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अब ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये करता क्या है? सीधी सी बात है कि ऐसे देश जहां पर खाद्यान्न की कमी है, बच्चों को सही तरीके से भोजन नहीं मिल पा रहा, लोगों को भी भोजन नहीं मिल पा रहा है, उनको भोजन उपलब्ध कराने का काम करती है। अब आप देखिए कि सीधे सीधे ये कहीं भूखमरी और कुपोषण से जुड़ गया है। और इसके बाद फिर आपको जाना चाहिए इस बात पर कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है WFP, क्या ये भारत में भी काम कर रहा है? और भारत में अगर काम कर रहा है तो इसका रोल क्या है? ये इसका एक अंग हो गया जो बिल्कुल लेटेस्ट से जुड़ गया। और इसका फिर एक जो दूसरा पार्ट होगा वो ये होगा कि सरकार इसके लिए क्या कर रही है भूखमरी को दूर करने के लिए। इतने आजादी के इतने साल हो गए हैं, हम कहां हैं? यहां तक कि हमारे पड़ोसी देश जो हमसे बाद में आजाद हुए, जो एक तरह से लगभग लगभग उस तरह से प्रजातांत्रिक स्थिति में नहीं रह रहे हैं, उनकी स्थिति हमसे बेहतर है। जिसमें आप बकायदे बांग्लादेश को देखिए, वो 75th पोजीशन पर है, 1971 में यह देश बना है, 75वें स्थान पर है। नेपाल उससे भी बेहतर स्थिति में, 73वें स्थान पर है और हम 94th पर हैं। तो क्या कारण है, क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं? क्या हमारे पास संसाधन की कमी है या और कुछ प्रॉब्लम है? इस पर आप देखिए और फिर सरकार इसके लिए क्या क्या योजनाएं चला रही हैं, और अगर वो योजनाएं चला रही हैं तो हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आपको इसका भी बकायदे मूल्यांकन करना होगा। हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अपने लोगों को इतना सस्ता अनाज उपलब्ध करा रहे हैं, हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न है, जरूरत से ज्यादा हम अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, फिर हमारे यहां भूखमरी क्यों है? हम बकायदे स्कूल में मिड डे मील की योजना चला रहे हैं कि अपने बच्चों को भेजिए, उन्हें हम भोजन दे रहे हैं और ये कहा जाता है कि हम उन्हें पोषण भोजन देंगे, फिर भी हम इससे क्यों जूझ रहे हैं? हमने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून तक बना दिया है, फिर भी हम इससे क्यों जूझ रहे हैं? राजनीतिक दल जब चुनाव लड़ते हैं तो बकायदे गरीबी हटाने की बात करते हैं, वो उनके एजेंडा में टॉप पर होता है, फिर भी हम इससे क्यों जूझ रहे हैं, हम इसे क्यों दूर नहीं कर पा रहे हैं? तो आपको इन सारे इश्यूज पर तैयारी करनी होगी, तब आप मान करके चलिए कि एक टॉपिक आपका अच्छे से तैयार हो गया है। फिर अगर आप इस रूप में तैयार कर लेते हैं तो फिर इस टॉपिक पर चाहे प्री में क्वेश्चन पूछा जाए या मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए या इंटरव्यू में पूछा जाए, आप पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरी स्पष्टता के साथ और तर्कपूर्ण तरीके से अपना उत्तर दे सकेंगे, जो किसी भी एग्जामिनर को प्रभावित करने के लिए अपने आप में पर्याप्त होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से तैयारी करनी पड़ती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से दो मित्र हैं, रजनी गुप्ता और श्रुति अग्रवाल बिजनौर उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।